नमस्कार, आज हम फिर से गोता लगा रहे हैं प्राचीन भारतीय परंपराओं की गहराइयों में और आज हमारा फोकस है संस्कारों पर। हमारे पास जो स्रोत हैं वो कई संस्कारों का जिक्र करते हैं, जैसे नामकरण, विवाह, जो जीवन के अलग अलग पड़ाव दिखाते हैं। और आज हम खास तौर पर बात करेंगे एक विशेष संस्कार की, चूड़ाकर्म, मतलब जिसे आम भाषा में हम सब मुंडन संस्कार कहते हैं। तो इन स्रोतों के आधार पर देखते हैं कि भाई इसका मानव जीवन में क्या महत्व बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं।
हाँ, तो जैसा कि इन दस्तावेजों में लिखा है, हिंदू धर्म में कहते हैं कि 16 मुख्य संस्कार होते हैं, है ना? गर्भाधान से शुरू होकर जीवन के अंत तक के संस्कार, और जीवन को एक तरह से पवित्र और बेहतर बनाने के लिए किए जाते हैं।
बिल्कुल सही कहा। और देखिए, इन संस्कारों का मकसद सिर्फ रस्म निभाना नहीं है। ये स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ये व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और हाँ, आध्यात्मिक विकास के लिए हैं। एक तरह से ये व्यक्ति को उसकी संस्कृति से, उसकी जड़ों से जोड़ते हैं, व्यक्तित्व को तराशने जैसा काम करते हैं, आप कह सकती हैं।
अच्छा, तो फिर इस मुंडन या चूड़ाकर्म संस्कार की क्या खासियत है? इन स्रोतों में इसके बारे में क्या खास मिलता है? यहाँ मुझे लगता है बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है।
हाँ बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ दिए गए विवरण के अनुसार और खास तौर पे जो संस्कार विवेचन का जिक्र है, उसमें चूड़ाकर्म यानी मुंडन का एक मुख्य उद्देश्य बताया गया है, गर्भज मालिन्य का निवारण।
गर्भज मालिन्य?
जी, यानी कि वो अशुद्धियां या कह लीजिए नकारात्मक प्रभाव जो जन्म के साथ आते हैं, उनको दूर करना। गर्भज मालिन्य, ये थोड़ा और समझना चाहूंगा, क्या स्रोत ये बताते हैं कि ये मालिन्य या अशुद्धि किस तरह की है? मतलब कोई फिजिकल चीज है या फिर कोई सिम्बॉलिक चीज, जैसे पिछले जन्मों का कुछ असर?
हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत एकदम सीधे तौर पर तो इसे डिफाइन नहीं करते, पर इशारा इसी तरफ है कि जो जन्म के समय के बाल होते हैं ना, उनमें गर्भावस्था के या शायद पिछले जन्मों के भी कुछ अवशिष्ट प्रभाव, कुछ नेगेटिविटी हो सकती है। तो उन बालों को हटाना एक तरह से शुद्धि की प्रक्रिया है, अतीत के बोझ को हल्का करके एक नई साफ शुरुआत करना। तो हाँ, ये भौतिक से ज्यादा मुझे लगता है प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक शुद्धि पर ज्यादा जोर देता है।
समझ गया। अच्छा, और इसके फायदों के बारे में भी तो कुछ लिखा है ना?
हाँ हाँ बिल्कुल। सामग्री में साफ लिखा है कि ये संस्कार स्वास्थ्य यानी आरोग्य, लंबी आयु, शारीरिक बल यानी शक्ति और खास तौर पर तेजस्विता को बढ़ावा देता है।
तेजस्विता, इसका मतलब?
हाँ, तेजस्विता का मतलब सिर्फ कोई बाहरी चमक नहीं है, बल्कि एक तरह की बौद्धिक और आध्यात्मिक दीप्ति, एक तरह का ऑरा कह सकते हैं। ऐसा लगता है कि मान्यता यह है कि शुद्धि के बाद ही बल और बुद्धि का रास्ता सही से खुलता है।
अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ बाल कटवाना नहीं हुआ, ये तो एक तरह से बच्चे को भविष्य के लिए तैयार करना हुआ। जैसे हम कहते हैं ना कि ज्ञान पाने के लिए मन का साफ होना जरूरी है, क्या ये उसी तरह की कोई शारीरिक और प्रतीकात्मक तैयारी है?
अरे वाह, बहुत ही सटीक कहा आपने। बिल्कुल इसी नजरिए से देखा जा सकता है इसको। अगर हम इसे संस्कारों की पूरी चेन में देखें तो ये व्यक्ति के पूरे विकास, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक की एक अहम कड़ी है। इन दस्तावेजों से तो यही लगता है कि ये बच्चे को जीवन के अगले महत्वपूर्ण पड़ाव के लिए, खास तौर पर शिक्षा शुरू करने के लिए, मतलब विद्यारंभ के लिए तैयार करने का एक अनुष्ठानिक तरीका है। शायद सोच ये रही होगी कि शुद्धि के बाद ही ज्ञान का प्रकाश ठीक से अंदर आ सकता है।
तो सार ये निकलता है कि ये जो स्रोत हैं, ये मुंडन संस्कार को सिर्फ एक ट्रेडिशनल रस्म नहीं मानते, बल्कि इसे स्वास्थ्य, लंबी उम्र और बल से जुड़ते हुए जन्म के साथ आई अशुद्धियों से मुक्ति दिलाने वाला एक जरूरी शुद्धिकरण संस्कार मानते हैं, ताकि जीवन की एक बेहतर और तेजस्वी शुरुआत हो सके। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि बचपन से ही व्यक्ति को रिफाइन करने की, उसे आध्यात्मिक रूप से तैयार करने की एक गहरी सोच इसके पीछे काम कर रही थी।
हाँ बिल्कुल, और ये बात हमें सोचने पर भी मजबूर करती है कि ये प्राचीन दस्तावेज इन प्रथाओं को कितने विशिष्ट, विकासात्मक और शुद्धिकरण के लक्ष्यों से जोड़ते हैं। यह वाकई विचार करने वाली बात है कि आज भी अलग अलग संस्कृतियां बचपन के इन महत्वपूर्ण मोड़ों को कैसे देखती हैं, और क्या उनमें भी किसी न किसी रूप में शुद्धिकरण या नई शुरुआत की ऐसी ही कोई धारणा मौजूद है। ये अपने आप में एक बहुत दिलचस्प तुलना का विषय हो सकता है आगे के लिए।